हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। क्लब में अपने पीछे तारा को देखकर ध्रुव ने उसे किडनैप कर किया था, पहले मुंबई में तो अब अचानक तारा को बैंगलोर में देखना और फिर उस क्लब में तारा के सामने तीन मर्डर करना कोई आम बात नहीं थी। ध्रुव कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसीलिए उसने तारा को भी उसी जगह कैद कर रखा था जहां पर देव शेरगिल था। तारा को सुबह होश आया तब उसने खुद को बंधे हुए पाया। आसपास सामान के बॉक्स के अलावा और कुछ नहीं था। तारा समझ गई थी ये ध्रुव ने किया है और होश में आते ही वो जोर से चिल्लाई। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर एक आदमी अंदर आया। वो उसकी तरफ गर्दन टेढ़ी करके अजीब नजरों से घूरने लगा और फिर बोला, तुम्हारे ये नखरे, चिल्लाना और खूबसूरती यहां कोई काम नहीं आएगी। तुम नहीं जानती तुम किसकी कैद में हो। मैं अच्छे से जानती हूं उस शख्स को और ये भी कि मैं किसकी कैद में हूं। अब चुपचाप मुझे खोलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तारा गुस्से में बोली। तारा की बात सुनकर उसने तिरछी मुस्कुराहट दी और फिर बोला, फिर तो और भी अच्छी बात है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके इतनी जल्दी जाने और कुछ ना करने पर तारा को हैरानी हुई, जबकि अक्सर उसने यही देखा सुना था कि किसी भी शख्स को जब कोई माफिया किडनैप कर देता है तो उसके आदमी उसे हर तरीके से टॉर्चर करते हैं। यहां ध्रुव के आदमी ने तारा के साथ कुछ नहीं किया, यहां तक कि वीर भी इस मामले से दूर था। तारा हैरानी से वहां बैठी हुई थी, तभी उसे किसी के कदमों की आहट हुई। उसने जल्दी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस नॉर्मल किए, मानो वहां आकर वो कितनी ज्यादा घबरा गई है। कुछ ही पलों में उसके सामने ध्रुव था। तारा ने उसे देखकर अपनी नजरें नीचे की और धीरे से कहा, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे छोटे छोटे भाई बहन। तारा बोल रही थी तभी ध्रुव ने उसकी बात काटते हुए बोरियत भरे लहजे में कहा, कम ऑन, डायलॉग तो नए लेकर आती, ये घिसे पिटे डायलॉग सुनकर मैं बोर हो गया हूँ। घर पर बीवी है, बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं जो मेरा वेट कर रहे हैं, मैं इकलौता कमाने वाला हूँ। इट्स रियली बोरिंग, कुछ इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने को है तो सुनाओ, वरना मेरा टाइम खराब मत करो। ध्रुव की बातें सुनकर तारा ने अपनी नजरें ऊपर की, वो अपनी हनी ब्राउन आंखों से उसे हैरानी से देख रही थी। मैं सच कह रही हूँ, आप चाहें तो मेरे साथ चलकर कन्फर्म कर सकते हैं, तारा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। ध्रुव ने कुछ पल उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा, फिर उसने अचानक कहा, चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया। तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे, वो भी इतनी जल्दी, तारा ने हैरानी से पूछा। उसका मकसद ध्रुव तक पहुंचना था और वो उसे इतनी आसानी से छोड़ रहा था, इसकी ना तो उसने उम्मीद की थी और ना ही वो चाहती थी कि ध्रुव उसे इतनी आसानी से जाने दे। हाँ छोड़ दूंगा, वैसे भी तुम मेरे किसी काम की नहीं हो और ध्रुव राणा यूजलेस चीजों को अपने पास रखने में यकीन नहीं रखता, ध्रुव ने सीधे सीधे जवाब दिया। ध्रुव ने फिर इशारे से बाहर खड़े आदमी को अंदर बुलाया, उसने तारा को खोल दिया था। तारा ने कुछ पल ध्रुव की तरफ देखा और फिर कन्फर्म करने के लिए पूछा, सच में चली जाओ ना, आप मेरे पीछे से मुझे गोली तो नहीं मार दोगे? तुम्हें गोली मारने के लिए मुझे पीछे आने की जरूरत नहीं है, चाहूं तो सामने से भी मार सकता हूं। चलो अब जल्दी निकलो यहां से, इससे पहले कि मेरा मूड ऑफ हो, ध्रुव ने बिना किसी भाव के कहा। तारा धीमे कदमों से चलकर बाहर जा रही थी। उसने मन ही मन बड़बड़ा कर कहा, ये तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, इसके साथ रहकर भी मैं इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाऊंगी, इतने करीब आकर मैं इससे दूर नहीं जाना चाहती। गॉड प्लीज कुछ चमत्कार हो जाए और ये मुझे अपने पास रोक ले। ये रोक क्यों नहीं रहा है? अरे शॉपिंग करने जाते हैं तो घंटों मोल भाव करने वाला दुकानदार भी पीछे से आवाज लगाता है, लेकिन ये क्यों नहीं रोक रहा? तारा चलते हुए बार बार मुड़कर ध्रुव की तरफ इस उम्मीद से देख रही थी कि वो उसे रोक ले। ध्रुव ने तारा की इस हरकत को नोटिस किया और फिर वहीं से तेज आवाज में कहा, तुमसे फास्ट तो वो बच्चे चलते होंगे जिनका स्कूल जाने का मन ना हो। ध्रुव की बात सुनकर तारा हड़बड़ा गई और वो फिर भागते हुए वहां से चली गई। बाहर आकर तारा ने देखा काफी सारे आदमी वहां खड़े हुए थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। तारा वहां से बाहर निकली तब उसे एक टैक्सी दिखाई दी जिसमें बैठकर उसे वहां से जाना था। तारा के जाते ही वीर ध्रुव के पास आया और उसने भी हैरानी जताते हुए कहा, तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो, ये कोई नहीं समझ सकता है। यू आर रॉन्ग, एक शख्स है जो मेरे हर मूव को समझता है एंड यू नो वेरी वेल वो कौन है, ध्रुव ने भवें उठाकर कहा। हाँ और कौन हो सकता है, तुम्हारे मेंटोर और हमारे सब कुछ, ऐसा डिसीजन तो योग अंकल भी नहीं लेते, फिर तुमने इतनी आसानी से उस लड़की को क्यों जाने दिया? तुमने बताया कि वो मुंबई में भी हमें मिली थी उस रात पहाड़ी पर जब हम सब साथ थे, उस पहाड़ी पर ज्यादा लोग नहीं आते हैं, फिर भी वो हमारे पीछे आई और फिर अचानक से बैंगलोर में यहाँ मिली। उसे हमारे किसी दुश्मन ने भी भेजा हो सकता है, वीर ध्रुव को समझाने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव ने पूरी संजीदगी से उसकी बातें सुनी और फिर जवाब में कहा, यही तो बात है वीर, कि उसे मेरे किसी दुश्मन ने भी भेजा हो सकता है। और यकीन मानो, मुझे अपने दुश्मनों को अपने साथ लेकर घूमने का कोई शौक नहीं है। वो यही चाहते थे, वो लड़की मेरे करीब रहकर मेरे बारे में जाने, और मैं किसी को भी ये मौका नहीं देने वाला। ध्रुव राणा की मर्जी के खिलाफ उसका साया भी उसके करीब नहीं आ सकता। अपनी बात खत्म करके ध्रुव ऊपर जाने लगा, जहां शेरगिल को कैद करके रखा हुआ था, जबकि वीर वहीं पर खड़ा था। वीर ध्रुव को जाते हुए देख रहा था। उसने धीरे से कहा, बचपन से मैं इसके साथ हूँ। अपनी फैमिली के साथ अलग ही शख्स होता है, जबकि उनसे अलग होकर टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी। शायद ये क्वालिटी भी इसे योग अंकल से मिली है। अपने अपनों से इतना प्यार करो कि उनकी करीबी आपको सुकून दे, और दुश्मनों के साथ ऐसा सुलूक कि उनकी रूह भी सुकून को तरसे। वीर वहां खड़ा ध्रुव के बारे में सोच रहा था, तभी ध्रुव ने उसे ऊपर से कॉल किया और सर्द आवाज में कहा, मेरे बारे में सोचने से बेटर होगा कि ऊपर आ जाओ। उस लड़की से ज्यादा इंपॉर्टेंट दक्ष मल्होत्रा और शेरगिल हैं। वीर ने हड़बड़ाकर उसकी बात पर हामी भरी और जल्दी से ऊपर जाने लगा। वहीं उनसे अलग तारा बैंगलोर के मार्केट में पहुंच चुकी थी, जहां उसे छोड़ने को कहा गया था। रास्ते में ऑटो वाले ने उसे इतना घुमाया कि तारा भी कंफ्यूज हो गई कि वो कौन से रास्ते से उसे वहां लेकर आया होगा। तारा एक बार फिर उसी सिचुएशन में आकर खड़ी हो गई थी। ध्रुव के पास इतना करीब जाकर भी वो उसके करीब नहीं जा पाई, जो कि उसका मेन मकसद था।